बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आप सुन रहे हैं उर्दू पॉडकास्ट और मेरा नाम है वकास मीर। हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हैं इमाम सलीम अलवी साहब, आईसीसी नॉर्वे के इमाम भी हैं और पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं। एक फैमिली के ऊपर एक सीरीज़ हम कर रहे हैं जिसके ऊपर वो काफ़ी प्यारी प्यारी बातें हमसे कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे विरासत के ऊपर, तो पहले मैं उनको वेलकम कहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वकास भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने एक दफ़ा फिर अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू सामीन से मुखातिब होने का मौका दिया। जैसा कि आपने ज़िक्र किया, आज के मौजू के हवाले से तो बड़ा अहम मौजू है और इस अहम मौजू के हवाले से बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं कि जो हमारे यहाँ आम तौर पे पाए जाते हैं, तो उसके हवाले से इंशाल्लाह हम बात करेंगे।
हाँ जी मौलाना साहब, हमारे पास हमारे कल्चर में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कल्चर का हिस्सा इस हद तक बन चुकी हैं कि घर घर में मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं। एक इस तरह किस्म के सवालात उठते रहते हैं और बाद में जब आप किसी बंदे से बात करते हैं जो कि उम्र में इस लेवल पे हो कि आप उनसे सवाल पूछें कि आपको बता सकें कि विरासत क्या है, वसीयत क्या है, उनको भी नहीं पता होता। बस जो देखा ड्रामों में, इधर देखा, किसी से सुना, किसी से पूछा। तो ये मिसकंसेप्शंस जो हैं इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, क्या एक मुसलमान के लिए जायज़ है कि ये ना जान?
देखें, बेसिकली अनअवेयरनेस हमारे यहाँ होती है। हम ये समझते हैं कि हम मुसलमानों के घर में पैदा हो गए हैं और उसके बाद हम नाम भी मुसलमानों वाला है। कुछ चीज़ें हम जो है वो इस्लाम की अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं, तो हम ये समझते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी जो है वो पूरी मुसलमानों वाली बना ली है, हम मुकम्मल मुसलमान हो गए हैं। हालांकि अल्लाह ने जो कुरान के अंदर हमसे मुतालबा किया है ईमान वालों को ख़िताब करके, सूरह बकरा में अल्लाह ने कहा कि उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, कि तुम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। पूरे के पूरे दाखिल होने का मतलब ये है कि अपने तमाम मामलात, इनफरादी मामलात हों या इज्तमाई मामलात हों, अपने ज़ाती मामलात हों या ख़ानदानी मामलात हों, अपने जो है वो पर्सनल लाइफ हो या अपनी सोशल लाइफ हो, तमाम को इस्लाम के मुताबिक बना लो। यानी इस्लाम ने, यानी ज़िंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं है या कोई जो है वो ज़िंदगी का एरिया ऐसा नहीं है या फेज़ ऐसा नहीं है एज का कि जिसके हवाले से इस्लाम ने हमारी रहनुमाई ना की हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए रोल मॉडल करार दिया गया, तो आपने यानी बीइंग अ हस्बैंड, अच्छा उसके बाद बीइंग अ फादर, उसके बाद आप देखेंगे बीइंग अ रूलर, हर हवाले से बीइंग अ ट्रेडर, आपने ज़िंदगी के हर शोबे में हमें रहनुमाई की है, रहनुमाई दी है, हमें बताया है कि आपके मामलात कैसे होने चाहिए। तो इस हवाले से हम आम तौर पे हमारे कल्चर के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंडियन कल्चर से हमें आई हैं और हम ये समझते हैं कि ये भी शायद इस्लाम ही है या इस्लाम ने हमें इस हवाले से जो है वो चीज़ें ओपन रखी हैं। देखें, कुरान में सूरह निसा के अंदर अल्लाह ताला ने डिटेल के साथ यानी शेयर्स बताए हैं कि किसका कितना शेयर होगा। यानी बीवी का शेयर बताया, हस्बैंड का शेयर बताया, अच्छा उसके बाद पेरेंट्स का जो है वो शेयर बताया, इसी तरह जो औलाद है उनकी, उनका शेयर बताया, और उसके बाद फिर जो दूसरे रिलेटिव्स आते हैं उनके हवाले से बताया कि अगर जो है वो माँ बाप नहीं हैं, बीवी बच्चे नहीं हैं, तो फिर जो है वो अल्लाह ने बताया है कि फिर बहनों का हिस्सा, भाइयों का हिस्सा और फिर जो दीगर रिलेटिव्स होते हैं उनका हिस्सा होगा। तो इस हवाले से हमें बड़ी वजाहत के साथ चीज़ें बताई गई हैं। असल चीज़ ये है कि हमने इसको प्रैक्टिस करना है। तो हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है, यानी अनअवेयरनेस भी है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, और एक तीसरी चीज़ ये भी आ जाती है कि अगर किसी को अंडरस्टैंडिंग हो भी सही और उसमें फिर जब वो माली मामलात की बात आती है तो उसमें फिर थोड़ा सा ना वो रिजिडनेस आ जाती है और वो उसको प्रैक्टिस उस अंदाज में नहीं किया जाता और उसमें कोशिशें की जाती हैं, तावीलात की जाती हैं कि ताकि किसी तरह वो चीज़ें ना हो।
लेकिन आप के पास काफ़ी लोग आते हैं, आपसे सवाल करते हैं, आपसे पूछते हैं, रहनुमाई हासिल करते हैं आपसे, क्योंकि आप उनको जब उनसे बात करते हैं, जाहिर सी बात है कुरान हदीस की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये जो नॉलेज आपने मुझे अभी बताया कि सूरह निसा में जो अल्लाह सुब्हान तआला ने सारे शेयर्स का बता दिया है, पूरे का पूरा चार्ट है, एक किस्म का पूरे का पूरा चार्ट बना हुआ है कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए इसी तरह चलेगा सब कुछ, तो उस चार्ट में उस पूरे के पूरे कैलकुलेशन में अल्लाह ताला से तो कभी गलती हो नहीं सकती, तो क्या जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं जो किसी ऐसी सिचुएशन में होंगे या हो रह चुके हैं, क्या आपको लगता है कि उनमें से जो ज़्यादा लोग इस मुश्किल से गुजर चुके हैं जब इस कैलकुलेशन से हट के कुछ करते हैं तब मुसीबतें आती हैं उन पे भी, जिन्होंने उसको मिसयूज़ किया, उन्होंने भी जिनको साइड पे कर दिया, या फिर आपको लगता है कि हर बंदे को प्रॉपरली सूरह निसा जो है ना वो उनको ये हिस्सा पक्का करना चाहिए उनका, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के सामने जवाब भी देना है एज अ बच्चा और एज अ फादर, तो इसके ऊपर थोड़ी सी बता दीजिए कि कितनी ज़रूरी है उस मुसलमान के लिए सूरह निसा की वो आयतें याद।
जी, इसमें ना बाकायदा रिवायात में ये चीज़ आती है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनकी, जो कि उस दौर में तो आम ये ट्रेंड था कि हर बंदे के पास ना तलवार होती थी, तो वो तलवार का जो कवर होता था तो उस कवर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जो है वो कुछ ख़ास चीज़ें जो है वो लिख के रखी हुई थी, और उनमें ये आता है कि उन्होंने विरासत के अहकाम जो है वो उनमें लिख के रखे हुए थे हर वक्त, तो वो कहते थे कि ये बाकायदा ये इसको यानी ख़ास तौर पर इसकी अहमियत है। और ये भी रिवायात में ये चीज़ आती है कि इसमें यानी फ़राइज़ के इल्म का जो इल्म है कि अल्लमुल फ़राइज़, जैसे नमाज फ़र्ज़ है, ज़कात, ठीक इसी तरह उस इल्म के अंदर विरासत के इल्म को भी शामिल किया गया कि इसको भी उसी तरह सीखा जाए। अब जाहिर बात है कि जैसे हम नमाज सीखते हैं, जैसे हम रोज़े के अहकामात सीखते हैं, यानी सीखने का मतलब ये है कि रोज़े के अवकात सीखते हैं, फिर रोज़े के हालत में जो पाबंदी होती है, इसी तरह ज़कात के हवाले से, इसी तरह विरासत के हवाले से भी हमें सीखना चाहिए, उसको अहमियत देनी चाहिए। और अल्लाह ताला ने वहाँ पे अल्फाज जो कुरान के अल्फाज हैं कि विरासत के अहकामात जिक्र करके फिर अल्लाह ने फरमाया कि तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं, और जो अल्लाह की हदों को पामाल करता है तो उसके लिए बड़ी सख्त वईद है, बड़ी सख्त नाराज़गी है। हमारे यहाँ जो आम प्रैक्टिस है कि जब विरासत तकसीम करने की बारी आती है, और वो मैं ये समझता हूँ कि इंडियन कल्चर से हमें आई है कि हिंदू मज़हब में ख़वातीन को विरासत नहीं दी जाती, बहन को बेटी को विरासत नहीं दी जाती, तो उनके यहाँ जो ये कंसेप्ट था हमारे यहाँ भी वो आया, तो हमारे यहाँ ये आया कि यानी बेटी को बहन को मजबूर किया जाता है, सोशली प्रेशराइज किया जाता है, कि कानून के अंदर तो चीज़ मौजूद है, ठीक इसी तरह पाकिस्तान के कानून के अंदर भी, आइन के अंदर भी बेटी का बहन का हिस्सा मौजूद है, लेकिन होता क्या है कि कोशिश ये की जाती है सोशल प्रेशर में कि उसे सरेंडर करवा लिया जाए, उसका जो शेयर है, जो उसका शेयर जो उसे कुरान ने दिया है, जो इस्लाम ने उसे शेयर दिया है, वो सरेंडर करवा दिया जाए, तो सोशल प्रेशर में आके ख्वातीन सरेंडर करती हैं और ख्वातीन को महरूम किया जाता है। और ये बड़े बड़े वो मशहूर ख़ानदानों के अंदर और मजहबी ख़ानदानों के अंदर भी होता ये चीज़ें, यानी प्रैक्टिस इस अंदाज में नहीं है। तो इस हवाले से फुकहा ने बाकायदा तौर पे पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में उन्होंने ये फतावाजात भी मौजूद हैं, ये रहनुमाई भी की है कि कोई बहन या बेटी अपने हिस्से को सरेंडर कब कर सकती है, कि जब उसको उसका वो शेयर दे दिया जाए, उसकी मिल्कियत में आ जाए, और उसके बाद फिर वो अगर सरेंडर करती है तो फिर सरेंडर हो सकता है, उससे पहले सरेंडर नहीं है। बात मैं उस पर्सपेक्टिव में कर रहा था कि हमारे यहाँ जो हमारे कल्चर के अंदर ये चीज़ें हैं तो हम उस कल्चर को यानी रिलीजन समझ के वो चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। अब इस्लाम ने तो बड़ा वाज़े यानी शेयर बताया है कि बेटी का हिस्सा बाकायदा तौर पर, फिर बीवी का हिस्सा बाकायदा तौर पर, वालदा का हिस्सा बाकायदा तौर पे, यानी ख़वातीन का ऐसा एक लिहाज से मुतय्यन किया गया है और उनको अदा करने का हुक्म दिया गया है। तो इस हवाले से यानी कमी मौजूद है और कमी अमल के लिहाज से है, और मैंने उलमा की बात की है कि हम ये कहते हैं कि जो खातून ने ख़ुद अपना ऐसा छोड़ दिया, बहन ने अपना ऐसा भाइयों को ख़ुद दे दिया, बेटी ने जो है वो ख़ुद सरेंडर कर दिया। देखें जो फुकहा ने ये बात कही है ना कि जब आप उसको दें तो सही ना, आप देते ही नहीं हैं, और देने से पहले ही आप जो प्रॉपर्टी है, जो इनहेरिटेंस जितनी भी है, तो आप इंतकाल उससे करवा लेते हैं, या उसे सरेंडर करवा लेते हैं, या वो इस प्रेशर में कि मैं आज जो है वो लूंगी विरासत, तो फिर कल मेरे मेके का दरवाज़ा मेरे ऊपर बंद हो जाएगा। ठीक है, इस तरह भी हुआ है
इमोशनली
बहुत।
ब्लैकमेल होती हैं हमारी
जी
बहनें और माएँ, जाहिर सी
जी
बात है, ये
जी
सिचुएशन आपके सामने गुजरती रहती है लोगों के एक्सपीरियंसेस के थ्रू। लेकिन वसीयत के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे प्रोग्राम को, और बताएं कि वसीयत की इस्लाम में अहमियत क्या है, और जब वसीयत ना लिखी हो तो उसको, उस सूरत हाल को हल कैसे किया जाता है।
देखिए जी, ये जो वसीयत का हुक्म है, ठीक, ये सूरह निसा की उन आयात के नाजिल होने से पहले था। ये सूरह निसा की आयात के नाजिल होने से पहले ऐसे होता था, अरब माशरे के अंदर ये चीज़ थी कि विरासत वो तकसीम करते थे, और विरासत उसको मिलती थी कि जो बंदा घोड़ा चला सकता हो, घोड़े और उसी तरह तलवार चला सकता हो, यानी जो ताकतवर हो, वो कहते थे विरासत उसका हक है। यानी जो ख्वातीन हैं या जो कमज़ोर बच्चे हैं, उनका विरासत हक ही नहीं है। तो
मिलेगी
ये जब एक बंदा फौत होता था, तो पीछे उसकी बीवी है, उसके छोटे बच्चे हैं, वो बेचारे महरूम हो जाते थे, जो बड़ा होता था उसी को सब कुछ मिल जाया करता था। तो फिर इब्तिदा में ये हुक्म आया कि विरासत का आप वसीयत कर लें विरासत में, और अपने जो रिश्तेदार हैं उनको बाकायदा तौर पे कि मेरे बच्चों को इतना दिया जाए, मेरी बीवी को दिया जाए। ये इब्तिदा में था कि बाकायदा हुक्म था कि आप अपनी वसीयत लिख के अपने पास रखें, और ज़िंदगी का कोई पता नहीं है।
सूर्य निशान ने फाइनलाइज कर दिया सब
जी, जब
कुछ।
सूरह निसा की वो आयात नाजिल हुई, तो उसके बाद अब वो वसीयत वाला हुक्म नहीं है। लेकिन जो है वो, चूँकि वरसा मौजूद हैं, वरसा के हिस्से मुतय्यन हो चुके हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गाइडलाइन फिर ये दी कि ला वसीयत ले वारिस, कि जिस वारिस का हिस्सा कुरान ने बता दिया है, उसके लिए कोई वसीयत नहीं है, उसको आप वसीयत कर भी नहीं सकते। ठीक है, वसीयत है उसके लिए कि जो वारिस नहीं है, जैसे भांजा है मैयत का, भतीजा है, उसकी बहन है, उसकी औलाद की मौजूदगी में वो वारिस नहीं बन सकते। तो वो अगर उनको कोई चीज़ देना चाहता है, या किसी एक्स वाई जेड किसी थर्ड पर्सन को वो देना चाहता है जो उसका डायरेक्टली वारिस नहीं है कुरान की आयात की रोशनी में, उसको अगर वो देना चाहता है, तो उसमें फिर शरीयत ने हमें ये बताया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें ये पता चलता है कि वो 1/3 के अंदर वसीयत कर सकता है, 2/3 में फिर भी उसको वसीयत करने की इजाज़त नहीं है कि वो वसीयत करे। 2/3 वो उन्हीं वारिसों को मिलेगा कि जो उसके वारिस हैं,
अपने बच्चे हैं।
जो उसके बच्चे हैं, जो
ठीक,
उसकी बीवी है, उसके वालिदैन हैं।
तो आग, आग का लफ्ज हम काफी सुनते थे। मैं जब पाकिस्तान में था तो जब ये अखबार जो है सफा एंड पे जाता था तो वहां पर आग की लंबी लिस्ट लगी होती थी, तो बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ। ये क्या हमारे माशरे में इस चीज को आम किया गया जो कि टोटली अन इस्लामिक है, इसके बारे में बात करेंगे। कभी भी लिखा नहीं जाता, इतने ज़्यादा एड्स नहीं आ रहे उस चीज़ के, लेकिन कई लोग अपना जोश दिखाने के लिए इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में क्या हुक्म है।
इसमें बेसिकली जो आग है ना, आग एक लिहाज से सोशल बाइकाट है। ठीक है, सोशल बाइकाट की एक अनाउंसमेंट वो करवाई जाती है, हमारे यहाँ उसकी प्रैक्टिस है। देखें, इस्लाम ने हमें क्या चीज़ बताई है? इस्लाम ने हमें ये बताया है ना कि अल्लाह तज़िर वाज़िरतुन विज़्र उख़्रा, कि कोई बंदा किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। अब बेटे की गलतियों की सज़ा उसके वालिद को नहीं मिलेगी, इसी तरह वालिद की गलतियों की सज़ा उसके बेटे को नहीं मिलेगी। देखें, इस्लाम तो इस हद तक ओपन है कि हर बंदा वो इंडिविजुअल का जो भी अमल है, ठीक है, तो हमारे यहाँ से सोसाइटी में ये होता है कि अगर दादा ने भी कोई गलती की थी ना, उससे भी गलती हुई थी, तो वो 7 नस्लों तक तो वो बात चलती है कि तुम फलाने के दादा ने फलां ज़माने में ये गलती की थी,
इसका दादा था।
तो इसका दादा था, इसका नाना था, इसका जी भाई था, इसका फलां था, तो वो एक सोशल ईवल के तौर पे उसको लिया जाता है। और उस सोशल प्रेशर में, सोसाइटी का वो जो प्रेशर है, उस प्रेशर को, यानी अगर आप ये कहें कि डिफ्यूज़ करने के लिए या उसको हटाने के लिए, तो ये वहाँ पे एक चीज़ बनाई गई कि आग कर दें, कि अगर कोई बच्चे ने गलती किया तो ये हमारा तो उसके साथ कोई कंसर्न ही कोई नहीं। लेकिन इस्लाम ने
कितनी गैर इस्लामी चीज है ये।
बिल्कुल, इस्लाम ने इस हवाले से बिल्कुल ओपन कहा है कि बेटा जो है चाहे फाजिर है, चाहे जैसा भी है, ठीक है, उसको विरासत से महरूम नहीं
अगर दीन
किया
से निकल गया तो,
जी।
दीन से निकल गया बच्चा, इसके ऊपर कुछ है हुक्म?
इस हवाले से तो है कि मुसलमान का वारिस मुसलमान ही बनता है,
ठीक है,
ठीक है। मुसलमान जो है वो किस का वारिस कोई गैर मुस्लिम नहीं बन सकता है, मुसलमान का वारिस मुसलमान होता है, ईमान तो है। लेकिन उसके अंदर फिर ये नहीं है कि जी मुत्तकी हो, परहेजगार
फिर
हो,
मुसलमान हो, कलमा पढ़ने
मुसलमान हो,
वाला
कलमा पढ़ने वाला है।
है।
बाकी उसका ज़ाती अमल है, अगर उसके अमल में कोई कमी है, बेटे के अमल में कोई कमी है, या जो भी है, तो बहरहाल उस वजह से उसको विरासत से महरूम नहीं किया जाएगा।
आपके पास जब कोई भी बंदा आता है, आपसे टाइम लेता है, आपसे बात करता है, अपने अपने बारे में करता है, या फिर कोई सिचुएशन पाकिस्तान में होती है उसके बारे में करता है, हमारे सुनने वालों में सैकड़ों नहीं हजारों लोग इस तरह के होंगे जो कि कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन से गुजरे होंगे जब सूरह निसा की आयात जो हैं उनको सामने ना रखते हुए वो गुजरे हैं उस सिचुएशन से। उनके लिए कोई ऐसी आपकी तरफ से कोई एडवाइज़ उनके लिए जो कि आयात को साइड पे करके अपने मामला कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, या फिर उन बच्चों के लिए आपकी तरफ से कोई ऐसी एडवाइस, कोई ऐसी राय कि वो कैसे मामला को आगे लेके चलें? बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपके होंगे, बहुत सारी बातें आपने लोगों की सुनी होंगी, कोई इसके बारे में शेयर करेंगे कि जो इस मुश्किल वक्त में है वो किधर जाए?
असल में देखिए ना, एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं बरकत का। बरकत जो है वो ज़ाहरी तौर पे हमें नज़र आने वाली चीज़ नहीं होती कि हम उसको काउंटिंग में लेके जाएं, ठीक है।
बिल्कुल
तो जब आपके माली मामला ठीक होंगे ना, यानी बहन भाइयों का जो हक है, बेटियों का जो हक है, जो उरसा का हक है, उनको अदा किया जाएगा, तो फिर क्या होगा, आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपकी सलाहियतों के अंदर, आपके वक्त के अंदर, आपके रिसोर्सेज के अंदर, हर चीज़ में बरकत होगी। लेकिन अगर आप इसके मुकाबले में किसी का हक मार लेंगे, तो फिर आपके पास बज़ाहिर जितना भी पैसा आ जाए उसके अंदर कोई बरकत नहीं होगी। यानी कुरान ने हमें दो मिसालें देके बताया है कि एक सूद की मिसाल दी है और दूसरा सदका की मिसाल दी है, कि बज़ाहिर सदका करने से आपके पैसे कम हो रहे हैं, लेकिन कुरान क्या कहता है कि अल्लाह सदकों को बढ़ाता है, और बज़ाहिर सूद के ज़रिए आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, आपके पास आपके रिसोर्सेज में इजाफा हो रहा है, लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है कि उसमें कमी आती है। यमहकुल्लाहु अर्रिबा व युर्बिस सदकात, के अल्लाह सूद को मिटाता है और सदकात को अल्लाह बढ़ाता है। यानी इससे हमें ये बरकत का उसूल समझ आता है कि बज़ाहिर जो खर्च करना है लोगों पे, लोगों की ज़रूरियात पे, तो वो क्या करता है, वो आपके रिस्क में, आपके उन चीज़ों में उनको इजाफा कर रहा होता है, बढ़ा रहा होता है। और उसके मुकाबले में आप यानी पैसे अगर जमा कर कर के रखना शुरू कर दें, रिसोर्सेज को सिर्फ अपने तक और किसी को वो शेयर ना करें, तो फिर क्या होगा कि वही चीज़ें आपके लिए बर्बादी का और तबाही का जरिया बन जाती हैं। कुरान में सूरह तौबा के अंदर अल्लाह ने एक एग्जाम्पल दी है कि वो लोग जो पैसे जोड़ जोड़ के रखते हैं, उसमें से खर्च नहीं करते हैं, तो यही जो पैसे हैं, यही जो बैंक बैलेंस है, सोना चांदी के ज़खायर हैं, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला इन्हीं के ज़रिए उसको अजाब, और क्यों देंगे, क्यों अल्लाह कहेंगे लिहाजा मा कनस तुम, ये वही है जो तुमने ख़जाने जमा किए थे, बस अब तुम अजाब चखो उसका जो तुमने जमा किया था। और उसके मुकाबले में जो लोग खर्च करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र के अंदर जो है वो इजाफे का ज़रिया बताया कि आप सिला रहमी करो, ठीक है। तो सिला रहमी के ज़रिए क्या होगा, आपकी उम्र बढ़ेगी, उम्र में इजाफा होगा। तो उम्र में इट सेल्फ इजाफा तो उस अंदाज़ में नहीं होता, लेकिन आपकी उम्र में इजाफे का मतलब ये है कि आपके वक्त के अंदर बरकत होगी। यानी
सुबह
आप मशाहिर के हालात पढ़ें कि एक एक बंदा उसने जो है वो एक एक पूरी जमात का काम किया है, उसका कंट्रीब्यूशन आप देखें कि वो पूरी सदी का कंट्रीब्यूशन एक एक बंदे ने किया है और अपनी 40-50 साल की उम्र में किया है, तो वो क्या है कि अल्लाह ने उसके वक्त के अंदर, उसकी सलाहियतों के अंदर बरकत रखी, उसको कबूलियत अता की। तो
काम में बरकत पड़ जाती है, आपके वक्त में बरकत पड़ जाती है, आपको
आपके
महसूस होता
वक्त
है कि
में
उतने ही टाइम में एक बंदा करता जा रहा है, उसको समझ नहीं आ रही कैसे खत्म करूंगा मैं अपना पूरा मामला, लेकिन दूसरा बंदा उसी वक्त में शायद इतना कुछ कर चुका हो।
बिल्कुल
एक और भी सवाल मेरे पास है, वो मेरे जहन में अभी भी आया है कि जाहिर सी बात है संभाल के रखना अपनी दौलत को, बचा के रखना कि बुरे वक्त में काम आएगी, ठीक है, ये सोच भी है कुछ लोगों की, और कुछ लोगों की ये भी होती है कि इतनी देर तक बचा के रखना है कि जब कुछ भी ना बचे तब तक बची रहे और पता ही ना चले कि किसके ऊपर इस्तेमाल होगी। तो इस तरह के मामले में कोई ऐसे ऐसी सिचुएशन में अगर कोई है जहाँ पर आप माली हालात से आपके बच्चे जो हैं वो परेशान हैं, उनको इश्यूज हैं किसी किस्म के, अभी पाकिस्तान से भी लोग सुन रहे हैं, अमेरिका से भी हमारे काफ़ी ज़्यादा लिसनर्स हैं, यूरोप में भी हैं, तो मामलात हमारे कल्चर वाले बंदों के ना जिनका कनेक्शन हमारे इंडो पाक से है उन सब के एक ही किस्म के, बेचारों के सब के एक ही किस्म के होते हैं। यहाँ तो बहुत ज़्यादा दौलत होती है लेकिन उस वक्त उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा होता कि बाद में देखी जाएगी, बाद में जाके देख लेना। इसके ऊपर थोड़ा सा थोड़ी सी रोशनी डालें कि इस्लाम क्या कहता है इसके बारे में।
असल में ना ये दो चीज़ें हम जिसको कहते हैं कि जी बुरे वक्त के लिए बचा के रखें।
सब बुरा वक्त
तो बुरा वक्त अगर आप जो है वो क्या करें, बांट के खाएं, तकसीम करें, अल्लाह की मखलूक के ऊपर खर्च करें, तो ये जो है वो आपके ऊपर बुरा वक्त आने ही नहीं देता है।
बिल्कुल
अल्लाह के नबी
माशाल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा वाज़ फरमान है कि जो है वो सदका क्या करता है, अल्लाह के गज़ब को, अल्लाह की नाराज़गी को जो है वो मिटाता है,
जला
ख़त्म करता
मिटाता
है।
है बेशक।
ठीक है, और उसके बाद सदके का दूसरा फ़ायदा अल्लाह के नबी ने ये बताया कि मुसीबतें, आजमाइशें। ठीक है, तो वो बुरा वक्त वो क्या है, मुसीबतें और आजमाइशें ही है ना। तो आप सदका करेंगे, बांट के खाएंगे, और उसमें फिर सदका करना किसके ऊपर, ये सदका तो एक अलग पूरा टॉपिक है, उसकी तो हम अलग से प्रोग्राम उस पर कर सकते हैं। अभी चूंकि बात विरासत की चल रही है, तो विरासत ही के ज़िमन में, यानी जब आप अपने बच्चों के ऊपर खर्च कर रहे हैं, अपनी फैमिली के ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बेहतरीन सदका करार दिया। यानी एक बंदा अपनी फैमिली पे खर्च कर रहा है, अपनी बीवी पे, अपने बच्चों पे, तो इसको भी अल्लाह के नबी ने सदका करार दिया कि ये भी सदके के ज़ुमरे के अंदर आता है कि आप उनकी बेसिक नीड्स पूरी कर रहे हैं, उनकी जो जायज़ ख्वाहिशात हैं दायरे शरीयत के दायरे के अंदर रहते हुए आप पूरी करते हैं, कोई मसला नहीं है। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से हमें जो तालीम दी है वो ये है कि आप यानी इन्फाक का जो दायरा है, ठीक है, वो पराए ये दूर वाले वो बाद में आते हैं, पहले अपने आते हैं। फारसी में एक मुहावरा हमारे यहाँ बोला जाता है कि अव्वल खेश बाद दरवेश, कि पहला जो अपना है ना उसके ऊपर खर्च करें, उस पे खर्च करने का आपको दोगुना सवाब मिलेगा, और फिर जो दूर वाले हैं या पराए हैं, ये जो आपके साथ रिश्तेदारी या ताल्लुक नहीं है, तो वो बाद में आते हैं, उन पे तो सिर्फ सदका करने का सवाब, और अपनों पे खर्च करेंगे तो सदका भी होगा और सिला रहमी भी होगी। और फिर जो अपनी फैमिली है उसके ऊपर आप सदका करते हैं या उसके ऊपर आप खर्च करते हैं, तो हम हमारे यहाँ ये भी मिसकंसेप्शन है कि हम ये समझते हैं कि सदका तो फिर सिर्फ गरीबों को ही दिया जा सकता है, उन पे जो खर्च करेंगे वो सदका होगा। अपने बीवी बच्चे, ठीक है, वो हो सकता है कि वो घुट घुट के जी रहे हैं, या उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही, और वो सदके का, तो अपने बच्चों की नीड्स पहले पूरी करनी है, उनकी जो ज़रूरियात हैं या उनकी जो भी जायज़ ख्वाहिशात हैं आप पूरी करें, कोई मसला नहीं है, ये भी सदके के ज़ुमरे के अंदर आता है। फिर दूसरी जो हमें इस्लाम ने तालीम दी है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है, वो ये है, आपने फरमाया कि अगर तुम अपने वरसा को खुशहाल छोड़ के जाओ वो बेहतर है इससे कि वो तुम्हारे जाने के बाद अपनी ज़रूरियात के लिए लोगों के आगे हाथ फैलाते फिरें। नहीं, अपने जो रिश्तेदारों पर आप खर्च करें, अपनी फैमिली के ऊपर खर्च करें, तो जितना भी करेंगे, जितने अल्लाह ने आपको वसाइल दी है, तो एक कुरान में अल्लाह ने फरमाया ना कि वफ़ी अमवालिहिम हक़ुल लिस्साइली वल महरूम, के अल्लाह ने लोगों के माल में सवालियों का भी हक रखा है और महरूम लोगों का भी हक रखा है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम्हें तुम्हारे कमज़ोरों की वजह से रिस्क दिया जाता है, इन्नमा तुरज़कूना बिज़ुआफ़ाइकुम, कि तुम्हें तुम्हारे कमज़ोरों की वजह से, और कमज़ोर कौन है, औलाद मोहताज है, वो बेचारे ज़रूरतमंद हैं, बच्चे जब तक वो खुद कमाने के काबिल नहीं होते वो तो ज़रूरतमंद है ना, तो उनको वालिदैन देंगे तो उनकी ज़रूरत पूरी होगी, वो नहीं देंगे या उनको खामखा उनके ऊपर वो गिरफ्त लगा देंगे, पाबंदी लगा देंगे कि नहीं ये नहीं, ये नहीं जी, फजूल खर्ची तुम करते हो। ये तरबियत अलग चीज़ है, लेकिन तरबियत के साथ साथ उनकी जो, अब अगर आप उनकी ज़रूरियात नहीं पूरी कर रहे हैं तो अब ज़रूरत तो है, ठीक,
कहाँ से करेंगे
तो
वो।
वो कहाँ से पूरी करेंगे, ठीक है, तो फिर जाहिर सी बात है कि, और अगर वो किसी और रास्ते पे चल पड़ते हैं तो फिर उसमें कसूर तो आपका भी है।
अगर इस टॉपिक को आगे लेके चलें तो एक आपके पास सबसे ज्यादा विरासत के ऊपर, क्योंकि टॉपिक आज हमारा विरासत है इसलिए बार बार इस लफ्ज को इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपके पास विरासत के ऊपर सबसे ज्यादा कौन से सवाल आपको मुसूल होते हैं? सबसे ज्यादा आपके आमने सामने बैठ के लोग कौन से इशू लेके आते हैं? जाहिर सी बात है अनोनमस है तो किसी को नहीं पता किसकी बात हो रही है, आपके भी काफी
जी,
लिसनर्स
यहाँ
होंगे।
पे सबसे ज़्यादा जो सवाल आते हैं ना, वो आते हैं बहनों, ख़वातीन की तरफ से आते हैं,
अच्छा, सुभान अल्लाह।
ख़वातीन की तरफ से आते हैं अपनी विरासत के हवाले से, कि जो उनको वालिदैन की तरफ से विरासत मिलती है, उनके भाई उनको उसमें से हिस्सा नहीं देते हैं, ठीक है। और उनको इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है, और जिसकी तरफ मैंने पहले इशारा किया, सबसे ज़्यादा ये
बेशक
ख़वातीन की तरफ से ऐसे सवाल आते हैं।
यहाँ पर रहने वाली, यूरोप में
यहाँ
रहने
पे
वाली
यूरोप
खवातीन
पे रहने वाली ख़वातीन
जमीने पीछे हैं।
जो इनकी ज़मीनें पीछे हैं, जिनके जाहिर बात है कि इन्वेस्टमेंट है और वो सारी चीज़ें, तो उनके वालिदैन ने इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, तो ये सारी चीज़ें। और इस हद तक भी फिर है कि मतलब वो सारी ज़िंदगी वो अपनी बेचारी यहाँ पे बचते करके, उन्होंने वहाँ पे अगर कुछ लिया है तो उस पर उन्हीं के भांजे भतीजे, उन्हीं के जो भाई हैं, वो पहले गार्डियन थे, और गार्डियन से होते होते वो मालिक बन जाते हैं, और एट द एंड वो कुछ भी बंदे को नहीं मिलता है। बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी ली जाती हैं, उनको मिस यूज़ किया जाता है, और वो बेचारे ओवरसीज पाकिस्तानी हमारी बहनें, वो खाली आते एट द एंड रिश्तेदारी बचाने के लिए, या सिर्फ जो है वो एक ताल्लुक बचाने के लिए, या उनको एक और अंदाज भी, जी अगर वालिदैन भी जिंदा हैं तो वालिदैन उन्हें कहते हैं कि जी तुम्हारी अपने भाई को दे दोगी या दे दोगे तो क्या होगा, तुम्हारा भाई ही है ना, ठीक है, या तुम्हारी बहन ही है, इसको दे दो, ठीक है। अब हालांकि उसकी अपनी मेहनत की कमाई है, उसकी अपनी सेविंग है, वो सारी चीज़ें वालिदैन रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन वालिदैन फोर्स तो नहीं कर सकते हैं। जी एक तो ये सबसे ज़्यादा आता है। दूसरा आता है वालिदैन बच्चों की तरफ से, ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं कि जिसमें बच्चे आके बताते हैं कि हमने यहाँ पे रहना है, यूरोप में रहना है, हमारी जो ज़रूरियात हैं वो यहाँ के लिहाज से हैं, और हमारे जो वालिदैन हैं वो हमें ट्रीट करते हैं पाकिस्तान के लिहाज से, ठीक है, क्योंकि वो पाकिस्तान में बॉर्न एंड रेज हैं, तो यहाँ पे वो जॉब के लिए आए, ठीक है, हम उनकी वजह से यहाँ पे आए, सारी चीज़ें, लेकिन हमें, हमने यहाँ पे इस सोसाइटी में रहना है, यहाँ पे रहते हुए हमें स्टेबल होना है अपने आप को, लेकिन वालिदैन क्या है, यहाँ भी 2 पैसे बचे हैं तो पाकिस्तान में ये ज़मीन ख़रीद लो, पाकिस्तान में प्लाट ख़रीद लो, पाकिस्तान में प्लाजा बना लो, तो वो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी या पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट या वो सारी चीज़ें जो बच्चे यहाँ पे बॉर्न एंड रेज हैं उनके, वो किसी काम की नहीं है, ना ही उनकी उस लिहाज से। तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ एक और भी वो कंसेप्ट था पुराने ज़माने में, और अभी भी पाकिस्तान के अंदर है, कि जिस तरह आपने पहले जिक्र किया, बुरे वक्त के लिए बचाना है, तो बुरे वक्त के लिए करते करते वो इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं, करते जाते हैं, और ज़मीनों पे ज़मीनें, मकानों पे मकान, प्लाटों पे प्लाट वो लिए चले जाते हैं, और खुद जो है वो हैंड टू माउथ हो कि अपने बच्चों को भी हैंड टू माउथ ही रखते हैं,
जिस बुरे
कि
वक्त से बचाना है वो अपने ऊपर आ
जी
गया होगा उनका, लेकिन उनको
वो
समझ नहीं आ रही।
जी। तो उसमें ना एक एक मैं एक हदीस आपके सामने जिक्र करूंगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे फरमाया ना, भी तुम में से कौन है कि जिसे अपने वरसा का माल महबूब है? तो सहाबा कराम कहने लगे कि रसूल, ऐसा कौन हो सकता है, हर बंदे को अपना माल ही अच्छा लगता है, कि मेरी अपनी कमाई है, मेरी अपनी मेहनत है, मेरी अपनी सेविंग है। तो हुजूर ने फरमाया कि फिर तुम्हारा माल तो वही है ना जो तुम इस्तेमाल कर लो, ठीक है, सदका कर लो, या खा पी लो, पहन लो, पहन के बुसीदा कर लो, खा के ख़त्म कर दो, या सदका करके अपने लिए बचा लो, बाकी माल तुम्हारा तो नहीं है, जो हम बैंक बैलेंस बना रहे हैं या प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं वो हमारे तो किसी काम नहीं आने वाली,
बिल्कुल
वो
बिल्कुल
तो आगे वरसा की हैं। और फिर आम तौर पे ये जो हमारे सामीन हैं उन्होंने भी अपनी फैमिलीज़ में वो इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं या ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। मेरे पास तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं कि लोगों ने सारी ज़िंदगी करते रहे, और फिर एट द एंड क्या हुआ कि वही जिनके लिए वो बचा रहे थे, वही बहन भाई आपस में वो लड़ते रहते हैं सारी ज़िंदगी, कि जी फलां प्लाट तो मैंने लेना था, और फलां जो है वो अच्छी प्रॉपर्टी फलां ने ले ली, फलां ने ले ली, और वो होते होते क्या होता है कि वो बहन भाई ही आपस में उस प्रॉपर्टी की वजह से दूर हो जाते हैं।
सुबह हमारा ये टॉपिक जो है ना, ये डिमांड करता है कि ये काफी घंटों का हो, क्योंकि काफी एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन इसके अंदर है, बावजूद इस चीज़ के कि आपने उसको बड़े प्यार से छोटा सा करके सबको समझा दिया है। तो आखिरी आखिर में कुछ आप बताना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को, कोई ऐसी बात जो कि वो याद रखें?
मैं अपने लिसनर्स को ना आपके रेफरेंस से बिल्कुल मुख्तसर सा एक पैगाम देना चाहता हूँ। देखें, हमारे बहन भाइयों ने जो किया है वो उनके मामलात हैं, हम जिम्मेदार हैं अपने अमल के, कि हम अपनी औलाद के साथ सबसे पहले उनका हक है, कि हमारी बीवी हमारे बच्चे सबसे पहले उनका हक है, या हमारे वालिदैन हैं उनका हक है, उसके बाद फिर हमारे बहन भाई आते हैं या हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो आते हैं। तो हम सबसे पहले अपने बीवी बच्चों की ज़रूरियात पूरी करें अपनी ज़िंदगी में, और उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट, जो आज के दौर में, जो आज 2024 में जो हमारे बच्चों की ज़रूरत है, हम अगर 2050 की प्लानिंग कर रहे हैं तो 2050 में पता नहीं क्या हालात होंगे या क्या रियलिटीज़ होंगी और क्या किस अंदाज़ के चैलेंजेस होंगे, हमें नहीं पता है। तो हम अगर आज के दौर में रहते हुए, ठीक है, मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन मुस्तकबिल हमारे हाथ में तो नहीं है, ठीक है, तो हम यानी मुस्तकबिल को देख के उसकी रोशनी में हम अपने हाल को ख़राब न करें, अपने हाल को ठीक करें, अपने मामलात को ठीक करें। और कोई भी पता नहीं है, किसी भी वक्त हमारी जो ज़िंदगी है, मोहलत अमल हम इसको कहते हैं, ये ख़त्म हो सकती है। अगर हमने अपने बीवी अपने बच्चों के हकूक़ पूरे नहीं किए, वालिदैन के हकूक़ पूरे नहीं किए, और उसके बाद जो रिलेटिव्स हैं उनके हकूक़ पूरे नहीं किए, तो फिर हमने तो हर बंदे ने अपना जवाब देना है, ठीक है। ये इसलिए मैं दो चीज़ें कहता होता हूँ कि एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बंदे के राइट्स हैं। हम में से हर बंदा अपने राइट्स का रोना रोता है, बहन अपने राइट्स का, बेटी अपने राइट्स का, वालिदैन अपने राइट्स का, औलाद अपने राइट्स का। तो कोई बंदा भी अपने राइट्स को रोने के बजाय वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखना शुरू कर दे। अगर हर बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना शुरू कर दे कि बीइंग अ सन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बीइंग अ फादर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बीइंग अ ब्रदर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बीइंग अ हस्बैंड मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो दूसरों को खुद ब खुद उनके राइट्स मिलना शुरू हो जाएंगे।
जज़ाकअल्लाह खैर मौलाना सलीम साहब हमारे साथ थे आज, और आप सुन रहे थे उर्दू पॉडकास्ट। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।